मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। स्वयं हम सब खुदा के हजूर चुके हैं और उससे दुआ मांगे, क्योंकि जैसे वो चिड़ी के बोटों के लिए उनका घोंसला महफूज करता है, जैसे पानी में हर बसने वाले जानवर के लिए वो खुराक मुहैया करता है, जैसे हवा में उड़ने वाले हर परिंदे के लिए वो सांस मुहैया करता है, जैसे जमीन पर रेंगने वालों को वो रोज की रोटी मुहैया करता है, हम भी उसका शुक्र करेंगे क्योंकि वो भी हमें हर एक चीज़ मुहैया करता है इससे पहले कि हम उससे मांगे। और बहुत दफ़ा वो हमें नींद ही में बख्श देता है, सो आए उसे पुकारें और उसकी तारीफ करें क्योंकि वो ही तारीफ के लायक है। खुदा बाप तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू भला है, तू वफादार है, तू दुआओं का सुनने वाला है, तू हमारे ईमान को बढ़ाता है, तू चाहता है कि जैसे जैसे अकाब अपने बच्चों को घोंसले में से धकेलता है कि वो उड़ना सीखें और अपने मालक पर भरोसा करें, वैसे ही तू चाहता है कि हर रोज हम तुझ पर यकीन और भरोसा करें। सो खुदा बाप आज के सारे दिन में हम साथ सबके साथ हो और आज हम जो कुछ भी सीखने के लिए तेरे कलाम में से जा रहे हैं इस कलाम को ले हम सब के लिए खुदा खुदा ऐसा बीज ठहरे कि हम 100 गुना फल लाएं और सुनने वाले ही नहीं बल्कि अमल करके दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, क्योंकि तूने हम सबको कहा है कि जाओ जाकर सब कौमों को शगिर्द बनाओ। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे और आज हम 2 आयत में से चंद एक बातें सीखेंगे। और ये खत आप सबको याद है कि पौलुस रसूल ने लिखा इफिसस की कलीसिया को, उस शहर के रहने वाले लोगों को जिन्हें वो कहता है मुकद्दसीन, मुबारक लोग, अलहदा किए हुए लोग, और उनको वो पुकारते हुए कहता है कि तुम एक वक्त में कौन थे लेकिन अब तुम्हें मसीह ने क्या कुछ बना दिया। इफिसियों 3 उसकी 1 आयत। इसी सबब से मैं पालूस जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसु का कैदी हूं, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हमने 1 आयत में देखा था कि पालूस रसूल का सबब, दूसरा हिस्सा हमने देखा था कि पालूस रसूल कैद में है, और फिर हमने देखा था कि पालूस रसूल कौन था और क्या बन गया और उसने क्या कुछ मसीह की खातर कुर्बान किया। और यही बात कल हमने सीखी थी कि अपने आप को ना कहना। और आपको याद होगा कि मैं बहुत दफ़ा ये मिसाल देता हूँ कि पादरी साहब जिनसे मैं सीखता हूँ उनके पास उनके चर्च में एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर कि पादरी साहब इसे मखसूस करें, इसके लिए बरकत चाहें ताकि ये ज़मीन पर फले भड़े, हिकमत और दनाई और बाबरकत ठहरे जिस किसी को भी मिले, इसके लिए दुआ करें। तो पादरी साहब ने बेटे को लिया और कहा इस बेटे को अपनी खुदी का इनकार करना सिखा यीशु के नाम में, आमीन। और वो औरत हैरान हो गई कि ये कैसी दुआ है, ये कितनी छोटी दुआ है पादरी साहब ने की। तो पादरी साहब ने उसे बताया कि मेरी बेटी तूने कहा कि इसके लिए दुआ करें कि ये बरकत, ये तरक्की पाए और ये कौमों में खुदा के जलाल का वसीला बने और तरक्की का वसीला बने। तो पादरी साहब ने कहा कि हर एक तरक्की, हर एक रूहानी बरकत हर एक मुबारक कौम और जो कोई भी मुबारक होना चाहता है उसकी इब्तिदा इस बात से होती है कि अपनी खुदी का इनकार करे। क्योंकि जब कोई अपनी खुदी का इनकार करता है तो वो खुदा का इकरार करता है कि मैं नहीं बल्कि तू, मैं कम हूं और तू बड़े। और ऐसा ही पालूस ने किया। पालूस ने कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो जिंदगी मैं जिस्म में गुजारता हूं वो अपने लिए नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए गुजारता हूं। तो यहां पर हम उसी सूरमा सिपाही, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि वो ऐसा ही था। जिस्म में बेशक वो कमजोर हो, हमें नहीं पता कि उसकी जिसामत कैसी थी, ईमान की तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन हमें हकीकी तौर पर नहीं पता कि पालूस दिखने में कैसा था, उसका कैसा कद था या वो कितना मोटा ताजा था। लेकिन ये देख सकते हैं खुदा के कलाम के वर्कों पर कि वो सूरमा था, ऐसा मसीही जंगजू था, ऐसा सिपाही था जो रूहानी जंग में माहिर हो गया। और यही बात खुदावंद हमसे चाहता है। और आज हम दूसरी आयत पर गौर करेंगे। पालूस कहता है, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा। बहुत दफा लफ्ज शायद हम इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि जैसे शक शक की बुनियाद है, जैसे कोई शक की बात कही जा रही है कि शायद उन्होंने समझा या नहीं, शायद हो सकता है या नहीं। लेकिन यूनानी जुबान में जब हम लफ्ज शायद को देखते हैं तो इसका मतलब निकलता है चूंके, चूंके, और या कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है, इसीलिए जहां तक या जिस हद तक इसे समझा जाए। तो पालूस इसे इस तरह कहता है कि मुझे यकीन है, शायद को हम यूनानी जुबान में इस तरह पढ़ सकते हैं, वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने खुदा के उस फजल का हाल सुना होगा जो तुम्हारी खातर मुझ पर हुआ। सादा लफ्जों में वो उनको याद दिलाता है, पालूस रसूल ने कैद में से ये खत लिखा, लेकिन उससे पहले पालूस रसूल इफिसस में गया, उस शहर में उसने तालीम दी, अजीब अजीब काम उन्होंने देखे, और वो गवाह थे कि पालूस रसूल खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ खुदा का रसूल है। तो वो खत लिखते हुए दोबारा उनको याद दिलाता है कि मुझे यकीन है कि तुम पहले ही वो काम, वो गवाहियां, वो कुदरत का अजीब नजारा देख चुके हो जो मेरे बोलने के वसीला से तुम्हें हुआ था। इसीलिए वो कहता है कि शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। यहां पर पालूस रसूल क्यों ये बात कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने मेरे बारे में सुना है कि मैं पहले गैर कौमों को सताने वाला था, लेकिन अब मैं तुम ही को खुदा की कल तालीम और नसीहत और मोहब्बत और उसके रहम के बारे में बताने वाला मखसूस हुआ। तो पालूस रसूल यहां पर यही बात उनको कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का, खुदा का इंतजाम पालूस रसूल के लिए ये था कि वो उस भेद को जो भेद अजल ही से पोशीदा था, ये भेद क्या था? यीशु मसीह की खुशखबरी गैर कौमों में फैलाना। यहूदी, हम शुरू ही से देख सकते हैं ये एक दायरे की तरह है जो घूम रही है आज भी बात। यहूदी शुरू में किन कौमों से परहेज करते थे? गैर कौमों से। यहूदी अपने आप को पाक साफ और खुदा के रास्तबाज लोग समझते थे जैसे कि वो हैं, लेकिन वो दूसरी नीची कौमों से क्या करते थे? घिन करते थे, उनसे परहेज करते थे। तो पालूस रसूल ने जब खुदावंद यीशु मसीह से पैगाम सुना और जाकर उन कौमों को बताना शुरू किया जिनको यहूदी समझते थे कि ये नापाक हैं, और बहुत दफा गैर कौमों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था उस दौर में वो था कुत्ते, गैर कौमों को उस दौर में लफ्ज़ जो यहूदी इस्तेमाल करते थे वो कहा जाता था कुत्ते। इसका हमें यकीन और सबूत मिलता है बाइबल मुकद्दस के ही वर्कों में। मैं आपके लिए एक हवाला निकालूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपियों 3 बाब उसकी पहली आयत में पालूस रसूल यहाँ पर लिखते हुए उनको कहता है, गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हफाजत है। ये बात वो बार बार इसलिए लिख रहा है कि हम यकीन कर जाएं, जैसे उनको वो चाहता था कि तुम खुदावंद में खुश रहना सीखो। वो बार बार ये बात कहता है, और आपको याद है कि जब हम बार बार कोई बात कहते हैं उसमें खासियत पाई जाती है, अहमियत पाई जाती है, उसकी कदर है। मिसाल के तौर पर, मेरे बेटे बिजली के बोर्ड को हाथ ना लगाना। हम कई सौ दफा कहते हैं अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं। अगर हमारी गली में या इर्द गिर्द कोई बड़ा नाला हो तो हम कहते हैं कि वहां पर ना जाना, पहले भी बहुत से बच्चे गिरे हैं और उनको बहुत ज्यादा चोट आई है, क्योंकि हम जानते हैं वो खतरे की बात है। तो पालूस रसूल भी जानता है कि खुदावंद में खुश रहना ऐसी बात है जो कि हजार मोतियों और चांदी के सोने से कैसे कहीं कीमती है। तो दूसरी आयत में कहता है, कुत्तों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से अबादत करते हैं और मसीह यसु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। यहाँ पर जब वो लफ्ज़ कहता है ना, कुत्तों से खबरदार रहो, तो वो बयान करता है उन टोलों को जो गैर कौमें, उन टोलों को जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, उन टोलों को जो बिदतें फैलाते थे, उन लोगों को जो यीशु मसीह की परस्तिश करने की बजाय इंसान की तस्वीर रखकर उसके सामने परस्तिश करते थे। तो पालूस रसूल कहता है कुत्तों से खबरदार रहो। उस दौर में और आज भी, आज के दौर में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही बेइज्जती का लफ्ज है। तो पालूस रसूल उस दौर में कहता है कि कुत्तों से खबरदार रहो। उस दौर में भी ये बात पाई जाती थी कि ये ऐसे हैं जो वफादारी नहीं करेंगे बल्कि गलत तालीम देंगे। आज के दौर में हम कलीसियाई दौर में जो बात करते हैं, खासकर ईमानदारों को खबरदार करने के लिए, के बिद्दतों से यानी कि गलत तालीम से खबरदार रहो। यीशु मसीह ने बार बार कहा कि झूठे नबी आएंगे, यीशु मसीह ने बार बार कहा कि बहुत से गलत तालीम देने वाले आएंगे, उनसे खबरदार रहो। सो पालूस रसूल जब उनको कह रहा है कि मुझे यकीन है कि शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, कि तुम गैर कौम वालों को, सो यहूदियों को जब ये बात मालूम हुई तो यहूदी क्या करते थे, पालूस से नफरत करते थे कि तू गैर कौमों को कलाम सुनाता है। तो पालूस ने कहा कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए ही नहीं आया बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया है। तो मुझे उम्मीद है कि उसने ये बात कही होगी जो यूहन्ना ने दरहाई थी, यीशु मसीह के अल्फाज थे जब यीशु मसीह निकोदीमस से बात कर रहा था। तो यीशु ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, ना कि सिर्फ यहूदियों से, ना कि सिर्फ कुछ कबीलों से, बल्कि खुदा ने पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया में हम भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, हर एक कबीला हर एक मजहब शामिल है जिसमें क्या है, पूरी दुनिया है। तो खुदा ने पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना बेटा यीशु मसीह भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए तो वो मसीह का बदन बने, कलीसिया बने। तो यही पैगाम पालूस रसूल का वो इंतजाम था, वो हाल था जो खुदा ने उसके लिए किया। पालूस को खुदा ने इब्तदा ही से मखसूस कर लिया था, हमें भी किया है किसी ना किसी मकसद के लिए। मेरे साथ एक हवाला निकाले, पालूस रसूल इस बात की गवाही देता है, कहता है गलतियों पहला बाप, गलतियों पहला बाप उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर वो अपना हाल बताता है कि वो क्या करता था, कलीसिया को किस तरह सताता था। यहाँ पर भी वो बात कर रहा है उन लोगों से जो कलीसिया में आ गए और कहने लगे कि मसीह मरा तो है, लेकिन उसके मरने का तुम्हें क्या फायदा? यीशु मसीह पर ईमान तो लाए हो, लेकिन क्या यकीन है कि तुम्हें निजात मिल गई? सो ये वो बिद्दती लोग थे, ये वो लोग थे जो गलत तालीम देने के लिए पालूस के पीछे जाते थे और बताते थे पालूस ये बात ठीक करता है, लेकिन शक ये है कि क्या वाकई ही यीशु मसीह मरा था? क्या वाकई ही यीशु मसीह खुदा का बेटा है? क्या वाकई ही यीशु मसीह ने ये काम किए हैं? क्या खुशखबरी ये नहीं कि शरीयत कहती है कि तमाम हुक्मों पर अमल करो तो फिर निजात पाओगे? यानी कि वो गलत तालीम देते थे। आज के दौर में हमें भी ऐसे लोगों से बचने की और खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कहेंगे आकर कि यीशु मसीह जी आपके लिए मरा है, लेकिन यीशु मसीह इस काबिल नहीं था कि आपको निजात दे सके, तो वो आपको झूठी तालीम देंगे, उनसे खबरदार हैं। पालूस कहता है यहाँ पर यही बात 15वीं आयत में, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, उस खुदा ने जिसके बारे में अभी हमने गाया कि तारीफ करो फरिश्ते सारे, तारीफ करे जमीन सारी, तारीफ करे हर एक ईमानदार, उस खुदा ने पालूस को चुन लिया, हमें भी मखसूस किया है अपनी माँ के पेट ही से, माँ के पेट ही से, कि जब उसकी ये मर्जी हुई तो पालूस को खुदा ने बुलाया। किस लिए? 16वीं आयत में लिखा है कि अपने बेटे को मुझ में जाहर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। ना तो मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। तो पालूस रसूल कहता है मैंने किसी बंदे से सलाह नहीं ली कि क्या वाकया ही मुझे खुदा ने बुलाया। कहता है कि मुझे यकीन था खुदा ने मुझे बुलाया कि जा और गैर कौमों को जाकर बता, गैर कौमों को जाकर बता। एक और मेरे साथ हवाला निकाले, इस पर हम खत्म करेंगे। रोमियो 15 बाप उसकी 20वीं आयत में पालूस रसूल कहता है कि मैंने यरूशलम की चारों तरफ उन मौजजात के वसीला से, कुदरत के वसीला से, अजीब कामों के वसीला से मसीह की खुशखबरी फैलाई। रोमियो 15 बाप उसकी 20वीं आयत में लिखा है, पालूस कहता है और मैंने यही हौसला रखा कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरों के बुनियाद पर अमारत ना उठाऊं, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही, क्योंकि जिन्होंने उसकी खबर ना जिनको उन जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। सो पालूस रसूल गैर कौमों की तरफ राकब हुआ, और खुदावंद ऐसी ही बुलाहट हर एक के लिए रखता है। मेरे दुआ करें कि इस साल खुदावंद मुमकिन करे कि इंडिया में, हैदराबाद में, बहुत बड़ा जो शहर है इंडिया, सूबा है, उसमें जाकर तालीम दी जाए, ना कि सिर्फ यहाँ पर बल्कि यहाँ इंडिया में, और फिर सिंध में, फिर इधर क्या कहते हैं कि बॉर्डर के नज़दीक हिंदुओं के बहुत से घराने हैं, वहाँ पर दावत मिली है, वहाँ पर जाकर उनको कलाम सुनाया जाए। तो हम सबको भी हर रोज़ ऐसी ही खुदावन से दुआ करने की जरूरत है, खुदावन मुझे भेज, और आप ये काम अपने घर से, अपनी कलीसिया से शुरू कर सकते हैं, ताकि हम भी पालूस की तरह कहें कि हमें खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। आए हम खुदा के हुजूर झुकें दुआ करें।